आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। सोमवार की शाम 7 नवंबर, दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं खुशबू कुमार। ईडब्ल्यूएस सही है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के बहुमत का ये मानना है। इस फैसले से आरक्षण की बहस कोई नया मोड़ लेगी क्या?
आरक्षण आर्थिक व्यवस्था पर भी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी आरक्षण दिया जाए, ये एक जो नया केस है वो ओपन होने की पूरी तैयारी मुझे लगता है इसमें हो सके।
समझेंगे इसे। फिर बात भारत जोड़ो यात्रा की, जिसे 2 महीने पूरे हो गए हैं। कितना मकसद पूरा हुआ कांग्रेस का और आगे क्या होना है पूछेंगे। फिर मंदी के चैलेंजेस पर भी थोड़ी बात अब जरूरी हो चली है, क्योंकि कुछ डराने वाली खबरें आ रही हैं। आखिर में एक और डर पर बात। करीब 200 देश उस डर का समाधान खोज रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन शुरुआत करेंगे दिन भर की 60 सेकंड्स हेडलाइन से। शुभम तिवारी लाए हैं।
शुक्रिया खुशबू। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 3-2 बहुमत से मुहर। 10% आरक्षण की व्यवस्था रहेगी बरकरार। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को नहीं मिली आज जमानत। 9 नवंबर को फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कहा, यह मामला सुनने योग्य ही नहीं। ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश, नेशनल हेराल्ड मामले में हुई पूछताछ। ठग सुकेश ने एलजी को लिखी एक और चिट्ठी, आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। ट्विटर ने निकाले गए एम्प्लॉयज में से कुछ को वापस बुलाया, कहा गलती से टर्मिनेट कर दिया गया था। और विराट कोहली पहली बार बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। डेविड मिलर को पछाड़, अवार्ड किया अपने नाम।
ये है आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूँ खुशबू। आरक्षण की कई गिरहें हैं। आप इसकी एक डोर को सुलझाते हैं, दूसरी उलझ जाती है। ऐसी ही एक डोर है ईडब्ल्यूएस, यानी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। इसके लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसको बहुत से लोगों ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना। लेकिन आज 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने इसे सही बताया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। तो चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविन्द्र भट्ट ने असहमति जताई। फैसला आया तो पॉलिटिकल पार्टीज के फॉरेन रिएक्शंस भी आए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे मोदी सरकार की जीत बताया, तो बिहार में सरकार चला रही राजद पर हमला भी बोला, जिसने 2019 में इसका विरोध किया था।
हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी।
कांग्रेस की ओर से अलग अलग राय आई। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, वैसे तो उनकी पार्टी 2019 में ही इस फैसले के साथ थी, लेकिन जब नौकरी है ही नहीं तो इस आरक्षण का क्या लाभ। वहीं पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, ईडब्ल्यूएस जैसी सहूलियत स्टेट को देनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात इस फैसले की ये है कि आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है, और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए।
लेकिन इसी पार्टी के नेता हैं उदित राज, उनकी राय अलग थी। उन्होंने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कोर्ट के फैसले को अनुचित कहा।
16 दिसंबर 1992 के दिन इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई है। तो 30 साल तक तो इंदिरा साहनी का जजमेंट की शर्त रही है, आज वो शर्त कहाँ गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का।
समर्थन और असहमति से आगे इस फैसले के बाद अब क्या साफ हो चुका है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो 2 जज असहमत थे वो क्यों थे, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर से।
देखिए, ये जो फैसला आज आया है ये काफी बड़ा फैसला है भारत के लिए और थोड़ा पेचीदा भी फैसला है, क्योंकि 3-2 से जो फैसला आया है उसमें 3 जज जो हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पाडरीवाला, उन तीनों ने सभी बिंदुओं पर अपनी हामी दी है। तब ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी, जो ये जो नई फॉरवर्ड कास्ट रिजर्वेशन है, वो इक्वालिटी यानी कि समानता के हक को वायलेट नहीं करती है और संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो है रिजर्वेशन एडिशनल रिजर्वेशन है, जो 50% रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए दी गई है उसके ऊपर थोड़ी आगे जाकर ये रिजर्वेशन लागू होगी, तो उस 50% को छुआ नहीं गया है। एक बात ये भी कही गई है कोर्ट के द्वारा, और ये जस्टिस पाडरीवाला ने भी खासतौर से कही, कि जो आइडेंटिफिकेशन है, जो किसको आप पिछड़ा मानते हैं, किस किस क्राइटेरिया से आप पिछड़ा मानते हैं, उसको ढंग से रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। हालांकि अगर आप वो जो डिसेंटिंग जजमेंट देखें, जो जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू यू ललित की तरफ से दी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने ये कहा है कि देखिए, इस तरह की आप EWS रिजर्वेशन फॉरवर्ड कास्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी वो पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई थी, और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन देना वो ठीक नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ता है, किस तरह से डिबेट आगे बढ़ती है, और क्या सरकार इस तरह की जो रिजर्वेशन है उस पर कोई अंकुश लगाती है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ये भी सवाल किया है कि रिजर्वेशन अनंत कैसे हो सकती है, कहीं पर तो जाकर उसका अंत होना चाहिए।
ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर, जो कोर्ट के फैसले का निचोड़ बता रही थी, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं। जैसे एक चीज तो ये क्लियर है कि अब तक जो रिजर्वेशन सामाजिक और एजुकेशनल था वो अब आर्थिक आधार पर भी दिया जा सकेगा, लेकिन जो आरक्षण अब तक अपवाद था, क्या इस फैसले ने उसको नियम बना दिया है, और क्या EWS आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन करता है, पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर हरीश वानखेड़े से।
अब उल्लंघन की बात तो आती नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बहुत सारी जो दुविधाएं या जो डिबेट था लगभग अभी खत्म होने के कगार पे है। जो डिबेट अभी बचा रहेगा वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इश्यूज पे रहेगा, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट के इश्यूज के आधार पर अभी बड़ा डिबेट चलने वाला है। अब जो हुआ है इस फैसले के बाद, वो जो आप जो कह रहे थे बात सही है कि एक नया आयाम उसमें जुड़ा है कि आर्थिक आधार पर भी अभी आरक्षण दिया जा सकता है। अब उससे जो बड़ा फर्क जो पड़ने वाला है वो ये है कि अभी तक जो लंबा एक इतिहास है आरक्षण का, जो जाति और शैक्षणिक अभाव के आधार पर दिया जाता था, उसको एक उस पर एक आरोप लगाया जा सकता है कि अभी तक जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, और आरक्षण का जो सिद्धांत है वो आर्थिक व्यवस्था पर लगना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका बड़ा असर मुझे लगता है SC और ST रिजर्वेशन जो है, जो खास करके जाति के आधार पर और पिछड़ेपन के आधार पर है, खास करके आदिवासियों का, उसको भी एक तरह का रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी कि वो जो आरक्षण है वो भी अभी इन आधारों पर ना होते हुए उसमें भी एक क्रीमी लेयर, एक आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनमें भी किसी तरह से ब्रांचेस बनाए जाए, और आरक्षण आर्थिक व्यवस्था पर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी आरक्षण दिया जाए, ये एक जो नया केस है वो ओपन होने की पूरी तैयारी मुझे लगता है इसमें हो सके।
हरीश जी, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि एक बातचीत इस पर भी हो रही है कि क्या आने वाले समय में EWS के 10% की सीमा भी बढ़ेगी, या फिर जो OBC, SC, ST रिजर्वेशन अब तक 50% के दायरे में ही सिमटने की बात होती थी, क्या उस दिशा में भी कुछ बात बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको?
बिल्कुल, एक तरह का पेंडोरा बॉक्स ही खुला है इस ऑर्डर के बाद। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन का जो डिबेट है वो 50% का जो ब्रैकेट इससे पहले की के ऑर्डर से आया हुआ था उसको ऑलमोस्ट उसने दरकिनार किया और एक नया क्राइटेरिया ओपन किया है। तो ऑलरेडी ये 60% के आसपास का रिजर्वेशन का शीट हम लोगों को मिल रहा है, SC ST OBC 50% और 10% ऑफ EWS रिजर्वेशन, तो ऑलरेडी वो 60% के आसपास चला ही गया है। तो उसमें वो जो 50% का क्राइटेरिया है वो अभी उस तरह से यानी कोई अवैध ही हो गया है, क्योंकि आपको SST OBC रिजर्वेशन देना ही है और EWS का रिजर्वेशन फिर से अप्लीकेबल हो गया है, तो 60% तो ऑलरेडी रिजर्वेशन 60% के आसपास ऑलरेडी रिजर्वेशन पहुंच ही गया है। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है जिसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर डिबेट उठ रही है या पसमंदा मुस्लिम रिजर्वेशन या दलित क्रिश्चियन को अलग से रिजर्वेशन देने की जो डिबेट उठ रही है वो एक नया अध्याय शुरू करेगा जिसमें रिजर्वेशन का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ी मांग और लोगों से आएंगी जो अपने आप को बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड या एजुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहते हैं, ऐसी तमाम कम्युनिटीज अभी आना शुरू करेगी और कोर्ट के पास उसको हॉल्ट करने के लिए कोई पर्याप्त उपाय नहीं रह जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सीड कर चुका है अपना जो क्लेम है कि रिजर्वेशन सिर्फ 50% नहीं रहेगा, 50% एंड अबव भी दिया जा सकता है।
शुक्रिया प्रोफेसर हरीश।
तीस दिन मैं कंटेनर में रह रहा था, फिर मैं वापस घर गया, मैं सोच रहा था यार अब चलो वापस कंटेनर चले।
सात सितंबर से शुरू हुई 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा को कांग्रेस राहुल गांधी की तपस्या कह रही है, वहीं बीजेपी इसे ढोंग बता रही है, लेकिन खुद राहुल गांधी का भी कुछ कहना है।
इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो मतलब जितने लोगों से आप पिछले 55 दिन में मिले हो,
पिछले पांच साल में मिले।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र में एंटर कर गई। महाराष्ट्र में 2 हफ्तों तक ये यात्रा रहने वाली है। इस दौरान ये 15 विधानसभाओं और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। राहुल गांधी इस दौरान 2 रैली को भी संबोधित करेंगे। दरअसल दक्षिण भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए ये यात्रा जब नांदेड़ होते हुए महाराष्ट्र में आज एंटर कर रही थी तो चर्चा इस पर होने लगी कि क्या यहाँ उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे रीजनल प्लेयर्स का साथ मिलेगा या राहुल एकला चलो रे के मंत्र पर चलेंगे। सवाल ये भी है कि दक्षिण भारत में जो स्वागत और समर्थन राहुल को मिला क्या नॉर्थ इंडिया में वो बरकरार रहेगा, क्योंकि इन स्टेट्स में बीजेपी न सिर्फ इलेक्टोरली बल्कि आइडियोलॉजी के लेवल पर भी बहुत मजबूत है। क्या यहाँ से इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन में कमी आएगी या फिर और बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ से आगे कांग्रेस के लिए, पूछा मैंने इंडिया टुडे टेलीविजन में कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से।
देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी अब तक दक्षिण भारत में उनकी यात्रा जारी है। यहाँ अगर आप देखें केरल में लोकसभा में कांग्रेस की स्वीप हुई थी, तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK को वहां समर्थन दिया जो सरकार में, आप चलिए तेलंगाना में जहां पिछले चुनाव में तो कम से कम कांग्रेस विपक्ष की नंबर 1 पार्टी थी, आप कर्नाटका में चलिए जहां कांग्रेस सरकार में भी रही है और वहां भी वो मजबूत पार्टी रही है। अब प्रॉब्लम महाराष्ट्र जैसे राज्य में क्या है कि ये एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब उसी महाराष्ट्र में आज अगर आप देखें तो कांग्रेस नंबर 3 या 4 पार्टी आप कहेंगे, इसलिए ऐसे राज्य में उतना उत्साह उतना प्रभाव इस यात्रा का होना इस पर सवाल है। अगर आप यात्रा का रूट भी महाराष्ट्र में देखें तो ज्यादातर वो मराठवाड़ा और विदर्भ में सीमित है, विदर्भ वही एरिया है जहां कांग्रेस की एक पकड़ रही है हमेशा, तो ये यात्रा उन्हीं इलाकों में महाराष्ट्र में भी जा रही है जहां ट्रेडिशनली कांग्रेस मजबूत रही है। प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे वो अब और अन्य राज्यों में आएगी जहां कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है तो उनका चैलेंज ज्यादा होगा। देखिए सवाल ये है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए है या नॉन कांग्रेस वोटर्स को लुभाने के लिए है, ये अभी तक क्लियर नहीं है।
राजदीप, कांग्रेस जो सिर्फ 4 राज्यों में सिमटकर रह गई है, 2 अपने बलबूते और तमिलनाडु और झारखंड में जूनियर प्लेयर के तौर पर, क्या ये यात्रा उनसे आगे बढ़कर कम से कम दक्षिण भारत में कांग्रेस को कुछ संजीवनी दिला पाई है?
देखिए मुझे लगता है आज की तारीख में हर दक्षिण के राज्य में केरल और कर्नाटका को छोड़कर कांग्रेस के सामने चुनौती है। तेलंगाना में जो कल चुनाव हुए उसमें बीजेपी नंबर 2 पार्टी उभर कर आई है, कांग्रेस अपना डिपॉजिट हारी है। आंध्र में आज कांग्रेस की आग दशा देखिए, जगन रेड्डी ने वर्चुअली टेक ओवर किया है कांग्रेस के बेस को। तमिलनाडु तो DMK का गढ़ है, वहां कांग्रेस तो बिल्कुल 2-3 सीटों पर ही लड़ पाती है आजकल, बहुत कम लोकसभा सीटों पर लड़ पाती है। रह गई फिर कर्नाटक जहां जरूर अगले 6 महीनों में जो चुनाव है मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बेस्ट चांस है कुछ कमबैक करने के लिए, और केरल जहां कांग्रेस अभी भी एक मजबूत उनकी एक संगठन है। तो दक्षिण में भी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है जिसमें ड्रामेटिक चेंज होगा। अब कर्नाटक का एक चुनाव है जिसमें शायद कांग्रेस का कोई असर पड़े, लेकिन वो भी लोकल लीडर्स को करना पड़ेगा। देखिए, यात्रा से केवल आप अपने इलेक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आपका संगठन मजबूत होना पड़ेगा, आपके लोकल लीडरशिप मजबूत होने पड़ेगी, जो आज की तारीख में दक्षिण में मुझे केवल कर्नाटक और केरल में कांग्रेस की दिखती है।
अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे, महाराष्ट्र में इस यात्रा में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के शामिल होने की बात है, इन नेताओं के साथ आने की चर्चा को किस तरह से देखना चाहिए?
देखिए, 2.5 साल के लिए एक महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, जिसमें कांग्रेस उसका एक अंग था, शिवसेना और एनसीपी के साथ। लेकिन आप जानिए, वो एक तीसरी कड़ी थी। शिवसेना की लीडरशिप थी, मुख्यमंत्री शिवसेना का था, एनसीपी एक तरह से डोमिनेंट पार्टी थी और कांग्रेस तीसरे पोजिशन में इस गठबंधन में थी। अब कुछ कांग्रेस नेता अभी कह रहे हैं कि शायद अगले चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी, पर क्या वाकई कांग्रेस में उतनी क्षमता, उनकी ताकत है? तो मुझे लगता है अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे जुट जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी को एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि हम एक हैं अभी भी और चुनाव एक होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कांग्रेस को आज ऐसी स्थिति है जहां उनको ये रीजनल अलायंस की जरूरत है। अब कुछ कांग्रेसी है जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं, नाना पाटोड़े वहां के अध्यक्ष, वो तो यहां तक गए हैं कि हम कोई नेचुरल अलाय नहीं है शिवसेना के। लेकिन जो जमीनी हकीकत वो यही है कि कांग्रेस अकेला एकला चालो महाराष्ट्र नहीं लड़ सकती, उन्हें एनसीपी और शायद शिवसेना की भी जरूरत पड़े अगले चुनाव में।
शुक्रिया राजदीप। सात महीने पहले से ही वैश्विक मंदी की आहट है, लेकिन धीरे धीरे ये आहट आमद में बदलने लगी है। दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होगा, इसके बाद ब्रिटेन और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है, चीन भी लपेट में आएगा। हालांकि भारत के लिए कहा जा रहा है कि यहां असर कम होगा। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन मंदी के खतरे के बीच आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसका अनुमान घटाकर 6.8% कर दिया है। दूसरी तरफ फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी छटनी करने वाली है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। कंपनी का कहना है कि अगले साल मेटावर्स की वजह से उन्हें काफी नुकसान होगा। इस साल कंपनी का शेयर भी 70% से ज्यादा टूट चुका है। तो क्या ये भी मंदी की ओर इशारा कर रहा है? हम इस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वैश्विक मंदी को लेकर बात करते हैं कि आईएमएफ क्यों कह रहा है कि भारत में इसका असर कम दिखेगा। यही जानने के लिए मैंने बात की बिजनेस टुडे में जर्नलिस्ट आदित्य राणा से।
रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में जो वैश्विक हालात हैं वो काफी खराब हुए हैं। उसकी बड़ी वजह रही है सप्लाई संकट, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। महंगाई बढ़ने की वजह से ब्याज दरों को तमाम देशों के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, सभी ने बढ़ा दिया। और महंगाई को रोकने के लिए जो ये ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, इसने ग्रोथ को धीमा किया। लेकिन ये सिलसिला इतना लंबा हो चुका है कि अब ग्रोथ धीमी ही नहीं है, कई देशों में ये नेगेटिव जोन में जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम 6.8 जो आईएमएफ का ताजा अनुमान है उस पर भी विकास दर हासिल कर लेते हैं, अगर हम उस विकास दर से भी आगे बढ़ जाते हैं तो ये तय है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। ऐसे में जो मंदी का खतरा है वो भारत के ऊपर दूर दूर तक नजर नहीं आता। उसके पीछे जो सबसे ठोस कारण है उसकी वजह है भारत में घरेलू उत्पादन का होना, और भारत की बड़ी आबादी का उस घरेलू उत्पादन की खपत भारत में ही कर लेना। इसकी वजह से भारत को लागत से अधिक मुनाफा भारत में ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ये समझने की है कि अगर यही प्रोडक्शन ज्यादा हो और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें तो भारत के पास ज्यादा इनकम आ सकती है, और उस स्थिति में हमारी जो विकास दर है वो भी कहीं ज्यादा हो सकती है।
अच्छा, तो ये खबर है कि मेटा भी छटनी की योजना बना रहा है, तो क्या ये मंदी से जुड़ा है या इसकी वजह कुछ और देख रहे हैं आप?
इस बार की मंदी का संकट टेक कंपनियों में ज्यादा नजर आ रहा है, चाहे वो एडुटेक कंपनियां हों, चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स हों, या बड़ी बड़ी दिग्गज गूगल, मेटा, एप्पल, टेस्ला जैसी टेक कंपनियां हों। यही वजह है कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है और मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, दोनों ने ऐलान किया था कि वो नई हायरिंग नहीं करेंगे। यहां तक भी लग रहा था कि मंदी से मुकाबला करने में ये कंपनियां सक्षम हैं। लेकिन बीते दिनों एक सर्वे आया था अर्न्स्ट एंड यंग का, उस सर्वे में कहा गया था कि दुनिया के 86% सीईओ को लगता है कि मंदी जरूर आएगी, हालांकि वो कुछ समय के लिए होगी और मंदी से अधिक चिंता महंगाई की है, क्योंकि महंगाई अभी जल्दी छटने वाली नहीं है। ऐसे में मेटा की जो अब नई खबर सामने आई है उसके हिसाब से चिंता ज्यादा बढ़ गई है। 2004 में स्थापित हुई फेसबुक, जिसने कुछ समय पहले अपना नाम बदलकर मेटा किया है, वो बड़ी छटनी करने जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ये फेसबुक में अब तक की सबसे बड़ी छटनी होगी। इस छटनी की शुरुआत इसी हफ्ते से हो सकती है और कहा जा रहा है कि बुधवार को ही कंपनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पिंक स्लिप यानी कि नौकरी छोड़ने का पैगाम थमा सकती है।
शुक्रिया आदित्य। पिछले कुछ बरसों से दुनिया अजीबोगरीब बदलाव देख रही है। सूखाग्रस्त रहने वाले इलाकों में बाढ़, गर्मी का लगातार बढ़ता प्रकोप, तो जंगलों में लगती आग। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से बहुत सी घटनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। क्लाइमेट चेंज से कैसे डील किया जाए, इसके लिए हर साल दुनिया भर के नेता यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट समिट में जमा होते हैं। इसे COP कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। इस साल 27वीं सालाना बैठक इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रही है, सो शॉर्ट फॉर्म में इसे COP 27 कहा जा रहा है। 6 नवंबर को शुरू हुआ ये सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा। लगभग 200 देशों के नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें शामिल हैं। पिछले साल के COP 26 सम्मेलन में करीब 200 देशों ने अपने कार्बन एमिशन को कम करने का टारगेट रखा था। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया था। मैंने एनवायरमेंटलिस्ट विक्रांत टोंगर से बात की और पूछा कि COP 27 में इस बार किन चीजों पर खासकर सबकी नजर रहेगी, पूरा का पूरा एजेंडा क्या रहने वाला है।
ठीक है, देखिए COP 27 जो हो रहा है इजिप्ट में, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में मौसम की जो मार रही है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज ने लोगों को प्रभावित किया है, भारत में भी देखा आपने जैसे बेंगलोर में जिस तरह से फ्लड आया और बहुत सारे कोस्टल एरियाज में, अभी उत्तर भारत में या बल्कि पूरे देश में आप देखेंगे कि मानसून के बाद इतनी हैवी बरसात हुई है, इतनी भारी बरसात हुई है अलग अलग हिस्सों में जो मानसून में भी नहीं हुई है। तो ये सारे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं और पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। बहुत क्लाइमेट रिफ्यूजी इससे पैदा हुए हैं, लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है। जहां तक एजेंडे की बात है तो COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, इसके एजेंडे बहुत हद तक क्लियर होते हैं और ये कहीं ना कहीं दुनिया को जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाना है उसके लिए बात होती है, डेजर्टिफिकेशन पर बात होती है, जल सुरक्षा पर बात होती है, जलवायु परिवर्तन में जो महत्वपूर्ण कारक है ग्रीन हाउस गैसेज उनकी बात होती है, और तमाम पार्टी जो है, तमाम जो सदस्य देश है उनसे विचार विमर्श होता है, एक निष्कर्ष पर जाया जाता है। COP 27 में जो इजिप्ट में हो रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि गरीब देश या जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको फंड दिया जाए विकसित देशों की ओर से, क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, वो रिसोर्सफुल है, उनके पास संसाधन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा दें, सस्ती टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं कि जिससे कि विकासशील देश या गरीब देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ सके। क्योंकि जैसे सस्ता और हरित ईंधन अगर मिलेगा अपने विकास को जारी रखने के लिए विकासशील देशों को, तो वो आसानी से कटौती कर पाएंगे।
विक्रांत, रूस यूक्रेन के बाद ऊर्जा के डायनामिक्स बदले हैं और एक समझ ये है कि भारत को अपनी डिपेंडेंसी कोल पर पहले से भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश हैं, वो मांग कर रहे हैं कि कोयले का खनन कम किया जाना चाहिए। ऐसे में मेरा आपसे ये सवाल है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों स्थितियों के बीच तालमेल बिठाना कितना आसान होगा?
बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, इससे केवल गैस सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ रहा पूरी दुनिया जहां जहां वो सप्लाई करते हैं, बल्कि इससे पॉलिटिकल हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए ये जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये पूरी दुनिया को एकजुट करके एक 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 टेबल पर बिठाकर और बड़ी सूझबूझ से अपने निजी स्वार्थों को त्यागते हुए, वैमनस्य के भाव को त्यागते हुए निर्णय लेने होते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एकजुटता को भी ये प्रभावित कर रहा है, क्योंकि देश दुनिया जो है आपस में बट रहे हैं। तो ये जो युद्ध है ये COP27 में बहुत बड़ा एक कारण बनेगा कि अगर वो निष्कर्ष तक पहुंचने में बड़ी अड़चन आएगी, राजनीतिक कारण भी है। दूसरा, जो आपने गैस की बात करी, तो देखिए जिस तरह से गैस सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है ये जो यूरोप या और कई देशों में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है वो देखना होगा, क्योंकि भारत का रूस के साथ अच्छा तालमेल है और ना तो भारत ने ऐसी कोई मंशा जाहिर करी है कि हम नहीं लेंगे गैस, या ना रूस ने भारत के लिए मना किया है। तो ऐसे में लेकिन फिर भी अगर गैस को लेके कुछ दिक्कतें आती हैं भारत में या किसी और देश में भी, तो नो डाउट कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी या दूसरे जो प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत हैं ऊर्जा के उन पर पड़ेगी और पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, अगर भारत को गैस की कोई प्रॉब्लम आती है जो कि एक ग्रीन फ्यूल माना जाता है, खासकर रूस का जो यूक्रेन के साथ युद्ध है इसकी वजह से अगर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में अगर जो नेट जीरो की बात हो रही है, जो टारगेट रखा है भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने, उसकी घोषणा भी की है, तो उसको अचीव करने में कई साल का फर्क आ सकता है। हालांकि वो डिपेंड करेगा कि कब तक हम कोल पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे, लेकिन अगर इस तरह से इंटरप्ट होती है गैस सप्लाई या जो नॉन कोल फ्यूल है, जो पर्यावरण हितैषी फ्यूल है, ईंधन है, उनमें अगर रुकावट आती है, तो कोल पे डिपेंडेंसी बढ़ने से हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ये ठीक नहीं।
शुक्रिया विक्रांत हमसे बात करने के लिए। और अब पॉडकास्ट समेटने का वक्त है। एक जरूरी बात, आज नामी गिरामी में सुनिए कहानी चीन की सत्ता में कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने वाले माओ त्से तुंग की, जिन्होंने मार्क्स को अपना गुरु माना और मरते दम तक चीन को मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश करते रहे। सुनिए इसे और बताइए radio@aajtak.com पर कैसा लगा, क्या और बेहतर करना चाहिए हमें। तो आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी नितिन रावत की। खुशबू का नमस्कार स्वीकारिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।